السلام علیکم، یہ پارٹ 18 ہے، کتاب بلیک شاہ، پیشکش محمد اظہر، مصنف ظہیر احمد۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 18۔ لیکن میں اندر ہی اندر سے بے حد ڈرا ہوا تھا۔ مجھ پر ڈر سے زیادہ اس کے بلیک شارک کے ہونے کا خوف طاری تھا، اور مجھے اس بات کی فکر دامنگیر ہو رہی تھی کہ اگر غلطی سے بھی میرے منہ سے نکل گیا کہ میں ڈگ کو بلیک شارک کے طور پر جانتا ہوں تو میرا حشر عبرت ناک ہوگا۔ اس لیے میں جلد سے جلد ڈگ سے دور ہٹ جانا چاہتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر ڈگ کے کھانے میں ایسی کمی پیشی کرنی شروع کر دی تھی کہ ڈگ کو میرے کھانوں کے ساتھ میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کافی بھی بری لگنے لگ گئی، اور پھر اس نے میری منشا کے مطابق مجھے نوکری سے برخاست کر دیا۔ اس سے آزادی پا کر میں بے حد خوش تھا۔ میں نے کچھ عرصے تنہائی میں گزارا، اور پھر میں نے اس ریسٹورینٹ میں آ کر نوکری اختیار کر لی۔ تب سے میں اس ریسٹورینٹ میں کام کر رہا ہوں، ڈکلوڈ نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، ڈگ ہی ایک بلیک شارک ہے تو اس نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی کہ وہ تہہ خانے میں جاتے ہوئے الماری کے پیچھے موجود خفیہ راستے کا دروازہ بند کرنا ہی بھول گیا، اور پھر اسے اس بات کا پتہ ہی نہ چلا کہ کوئی اس کے آفس میں نہ صرف داخل ہوا ہے بلکہ اس نے بلیک شارک کی ساری باتیں بھی سن لی ہیں۔ دبنگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسے محض اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے پیارے، ڈکلوڈ بتا تو رہا ہے کہ ڈگ بلیک شارک کے روپ میں بے حد غصے میں تھا اور کسی ماسٹر ڈوہم پر برس رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ماسٹر ڈوہم نے اسے کوئی ایسی رپورٹ دی ہو جس سے بلیک شارک کا غصہ بڑھ گیا ہو، اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ غصے میں انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس روز بھی ایسا ہی ہوا ہو، اور وہ ڈگ غصے میں ماسٹر ڈوہم سے بات کرنے کے لیے مشن روم میں گیا ہو، اور اس کا غصہ اس قدر شدید ہو کہ وہ اپنے آفس سمیت طے خانے کا خفیہ راستہ ہی بند کرنا بھول گیا ہو۔ اس کے بعد ڈکلوڈ نے بھی عقلمندی کا مظاہرہ کیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ ڈگ کی میز سے بلیک کافی کا بگ اٹھا کر لے گیا تھا، ورنہ ڈگ کو اس کی آمد کا علم ہو جاتا اور یہ اس طرح ہمارے سامنے اب جھکتا نہ ہوتا۔ عمران نے کہا، وہ قلعے کی آخری بلڈنگ میں بنے ہوئے ایک آفس میں ہوتا ہے۔ چونکہ وہ یہاں کا کنگ ہے اس لیے اس کے آفس میں آسانی سے کوئی نہیں جا سکتا۔ اس کے آفس تک پہنچنے کے لیے بہت سے خفیہ راستے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں سخت ترین حفاظتی انتظامات ہیں۔ ڈگ مخصوص افراد کے سوا کسی سے نہیں ملتا۔ اس کے احکامات کے بذریعہ سیل فون اور ٹرانسمیٹر سے سنے جاتے ہیں، ڈکلوڈ نے کہا۔ تم تو اس کے خانسامہ رہ چکے ہو، تمہیں اس بات کا تو علم ہوگا کہ ڈگ کن خاص لوگوں سے ملتا ہے اور وہ لوگ ڈگ سے کس سلسلے میں ملاقات کرتے ہیں، عمران نے پوچھا۔ ڈگ بلیک سٹی کا کنگ ہے، یہاں ہونے والے تمام جرائم اس کی ایما پر ہوتے ہیں۔ بلیک سٹی میں خاص قسم کا نشہ موجود ہے جو ڈگ کے ہی کسی مخصوص ٹھکانے پر بنایا جاتا ہے۔ وہ نشہ بلیک سٹی میں تو آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن اس نشے کی بیرونی دنیا میں بے حد کمی ہے۔ بیرونی دنیا کے جرائم پیشہ افراد جن میں زیادہ تعداد اسمگلرز کی ہوتی ہے وہ ڈگ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور اس سے وہ مخصوص نشہ جیسے ڈرگ اسموک کہا جاتا ہے حاصل کرتے ہیں۔ ڈرگ اسموک چونکہ ڈگ ہی فروخت کرتا ہے اس لیے اس کے ڈیلنگ بھی وہ خود ہی کرتا ہے، اور اس کی ڈیلنگ انہی افراد سے ہوتی ہے جنہیں وہ بذات خود جانتا ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے کیوں نہ ہو، ڈکلوڈ نے بتایا۔ تو عمران اس کے ساتھ ہی بے اختیار ہونٹ بھیج کر رہ گئے۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ ڈگ کب اور اپنے آفس میں ہوتا ہے؟ اس بار صدر نے پوچھا۔ جہاں اس کا دفتر ہے وہیں اس نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی رہائش گاہ بنا رکھی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ تنہا رہتا ہے اس لیے اسے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایمرجنسی کے تحت اسے کبھی بھی وہ اور کہیں سے بھی بات کی جا سکتی ہے، ڈکلوڈ نے جواب دیا۔ اگر ہم ڈگ سے بلیک स्मोक की डील करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कैप्टन शकील ने पूछा। इसके लिए तुम्हें डक के मैनेजर से मिलना होगा। तुम इसे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दोगे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हें ब्लैक स्मोक कितनी मकदार में चाहिए और डील के तौर पर तुम इन्हें कितना एडवांस दे सकते हो। मेजर जिसका नाम लांडवर था वो तुम्हारे बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करेगा और जब इसे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा ताल्लुक किसी मुल्क या गैर मुल्की एजेंसी से नहीं है और वाकई तुम ब्लैक स्मोक का हसूल चाहते हो तो फिर वो तुम्हें फाइनल डील के लिए डक से मिला देगा, वरना तुम्हारे डक तक पहुंचना नामुमकिन है, डिक्लोड ने कहा। क्या लांडूर जानता है कि डक कहाँ होता है? तनवीर ने पूछा। हाँ, लांडूर का ऑफिस सेकंड फ्लोर पर है और उसके ऑफिस के ठीक नीचे डक का ऑफिस है, जहाँ जाने का रास्ता लांडूर के सिवा कोई नहीं जानता, डिक्लोड ने कहा। तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने डिक्लोड से अपना मतलब की कई अहम बातें मालूम की और फिर उसने उसे वादे के मुताबिक मजीद डॉलर्स दिए और फिर वो वहीं अपने साथियों के साथ उसके सर्वेंट क्वार्टर से निकलता चला गया। अब आपका क्या प्रोग्राम है? दबंगा ने सर्वेंट क्वार्टर से निकलकर इमरान से मुखातिब होकर पूछा। वही जो तनवीर का है, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। तो न सिर्फ तनवीर बल्कि बाकी सब भी चौंक कर इमरान की जानिब देखने लगे। क्या मतलब? तुम्हें क्या मालूम कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तनवीर ने हैरान होते हुए कहा। तुम्हारा चेहरा मेरे लिए एक आईना है प्यारे, और इस आईने में मुझे तुम्हारी हर सोच का अक्स दिखाई दे जाता है। तुमने जिस अंदाज में डिक्लोर से सवाल किया था कि मैं इस वक्त समझ गया था कि तुम डक पर डायरेक्ट एक्शन का सोच रहे हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, क्राइम कोर्ट में इस कदर क्रिमिनल्स की मौजूदगी में इसके अलावा मुझे किंग डक तक पहुंचने का कोई और रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि डक ब्लैक पायरेट का ही नहीं इस सिटी का भी किंग है, तनवीर ने कहा। लेकिन इतने बड़े कोर्ट में इस कदर क्रिमिनल्स के खिलाफ हम कार्रवाई कैसे करेंगे? यहाँ तो चेपे पर मुसल्ला अफराद मौजूद हैं, जूलिया ने कहा। हम क्राइम कोर्ट में नहीं इस बिल्डिंग पर हमला करेंगे जहाँ डग मौजूद है, और ये काम हम उसके मैनेजर लॉन्डर के दफ्तर से शुरू करेंगे। क्लोड ने बताया है कि डग का ऑफिस इसके ऑफिस के बिल्कुल नीचे है। अगर हम लॉन्डर तक पहुँच गए तो फिर हमारे लिए डग तक पहुँचना मुश्किल नहीं होगा, कैप्टन शकील ने कहा। तो इमरान ने इसकी तायीद में इस बात में सर हिला दिया। इमरान के चेहरे पर कदरे तफक्कुर और सोच विचार के तासुरात थे। तो फिर चले लंडूर से मिलने, तनवीर ने पूछा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो सब किले के उस हिस्से की तरफ चल पड़े जहां लंडूर का ऑफिस था। झोपड़ी के दरवाजे पर अपने साथियों को देखकर मेजर प्रमोद के तने हुए सब ढीले पड़ गए। इनकी जगह अगर कोई और झोपड़ी में दाखिल हुआ होता तो मेजर प्रमोद हाथ में पकड़े हुए मिशन पिस्टल से इन पर ब्रश मार देता। आप यहाँ हैं और हम तीनों जंगल के काले भूतों से लड़ते फिर रहे हैं, लाटूश ने मेजर प्रमोद को देखकर अपने मखसूस अंदाज में कहा। वो लेडी ब्लैक और आफ्ताब सईद तेजी से अंदर आ गए। ये सरदार जुम्बू को क्या हुआ? इसका रंग नीला क्यों हो रहा है? लेडी ब्लैक ने कुर्सी पर बेहोश पड़े सरदार जुम्बू की तरफ हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। पहले तुम बताओ, तुम तीनों यहाँ कैसे आए हो? वहशियों ने तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो नहीं की? मेजर प्रमोद ने पूछा। हमने इन वहशियों को जिंदा छोड़ा ही कहाँ है, जिनके पास मशीन गने और मिसाइल लॉन्चर थे। हम इस जगह रुके बगैर मुख्तलिफ अस्तर में भागते हुए इन पर हमला कर रहे थे, जिससे कबीलों के वहशियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इनके दुश्मनों की तादाद कितनी है और वो अचानक हमला करके कहाँ गायब हो जाते हैं। तबाह होने वाली झोपड़ियों और जंगलों के कई हिस्सों में आग लग गई है, जिससे हर तरह धुएं के बादल उठना शुरू हो गए हैं। इस धुएं और आग में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका मिल जाता था। बहरहाल हमने शदीद हमले किए थे और कबीले के बेशुमार वहशियों को हलाक कर दिया था। हमने चूके आपको सरदार जंगू की झोपड़ी की तरफ जाते और इसे पकड़कर झोपड़ी के अंदर ले जाते देख लिया था, इसलिए हमने इस झोपड़ी के गिर्द जमा होने वाले वैश्यों पर ज्यादा हमले किए थे जिसके नतीजे में उनके बेशुमार साथी हलाक हो गए थे। अब इनमें चंद गिने चुने अफराद मौजूद थे जिन्होंने हमारे सामने अपने हथियार डालने शुरू कर दिए थे। ये 10-15 अफराद थे जिन्हें खाली हाथ देखकर हम आगे आ गए थे। हमने इनकी टांगों में गोलियां मार दी ताकि वो दोबारा असलाह उठाकर हम पर हमला ना कर सके। अब वो घने चुने वैशी वहीं बाहर पड़े तड़प रहे हैं और हम यहाँ आपके पास आ गए हैं ताकि अगर आपको हमारी जरूरत हो तो हम आपके काम आ सकें, आफ्ताब सही ने तफसील बताते हुए कहा। होनिया, तो तुमने सारा कबीला तबाह कर दिया है, मेजर प्रमोद ने होंठ भींचते हुए कहा। जी हाँ, अगर हम ऐसा ना करते तो ये हमें हलाक कर देते। ये नाम के ही नहीं सचमुच के वहशी हैं, लाटूश ने कहा। फिर भी तुम में से किसी एक को बाहर रुकना चाहिए था, हो सकता है कि कुछ वहशी दरख्तों या झाड़ियों में छुप गए हों, मेजर प्रमोद ने कहा। छुपते हैं तो छुपते रहें, हमने जख्मी होने वाले वहशियों के सामने ऊंची आवाजों में ऐलान कर दिया है कि हमारे साथियों ने कबीलों को चारों तरफ से घेर रखा है। अगर किसी ने सरदार जिंगू की झोपड़ी में हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हमारे साथी इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लाटूश ने कहा। फिर भी एहतियात जरूरी है, तुम जाओ बाहर रहकर निगरानी करो, तब तक मैं सरदार जिंगू को होश में लाकर इससे बात करता हूँ, मेजर प्रमोद ने कहा। मैं जाता हूँ, आफ्ताब सईद ने कहा, और मैं भी, लाटूश ने कहा, और फिर वो दोनों तेजी से झोपड़ी से बाहर निकल गए। इसे हुआ क्या है, इसका रंग इस कदर नीला क्यों हो रहा है, लेडी ब्लैक ने पूछा। मैं अपने साथ नीले रंग का एक बिच्छू और इसका तरियाक लाया था कि अगर मुझे किसी की जुबान खुलवानी पड़ी तो मैं इस पर नीले बिच्छू का इस्तेमाल करूंगा। पहले तो मुझे इसका कोई मौका नहीं मिला था, लेकिन यहाँ आकर सरदार जिंगू को देखकर मैंने इस पर नीला बिच्छू छोड़ दिया था जिसने सरदार जिंगू को काट लिया है। मेरा ख्याल था कि नीले बिच्छू का नफसियाती वार सरदार जिंगू के लिए काफी रहेगा और ये अपना रंग बदलता देखकर खौफ का शिकार हो जाएगा और फिर ये मेरे सामने सारी हकीकत उगल देगा। नीले बिच्छू के काटने से इसका हाल ऐसा ही हुआ था, ये बेहद खौफजदा हो गया था, लेकिन जब मैंने इससे ब्लैक पायरेट और ब्लैक शार्क के बारे में पूछने की कोशिश की तो इस पर से नीले बिच्छू के जहर का खौफ भी खत्म हो गया और उसने मुझे कोई भी जवाब देने से इनकार करते हुए अपने होश पी लिए थे और फिर ये इसी हालत में बेहोश हो गया। ये कन्फर्म है कि इसका ताल्लुक ब्लैक पायरेट से ही है, लेकिन ये हमें कुछ बताएगा अब मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है, मेजर प्रमोद ने कहा। ओ तो क्या इसने कुछ भी नहीं बताया है, लेडी ब्लैक ने होश सुकोड़ते हुए पूछा। बताया है लेकिन बहुत कम, और इस बहुत कम से हम कोई फायदा नहीं उठा सकते। सी हॉक और ऐसे ही कई अगवा शुदा मुसाफिरों को इन्होंने कहाँ रखा हुआ है इसका अभी कुछ पता नहीं है, मेजर प्रमोद ने होश काटते हुए कहा। तो फिर इसे होश में लाओ और इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसका ऐसा हशर करूंगी कि ये बगैर छू चरा किए रुके बगैर बोलना शुरू कर देगा, लेडी ब्लैक ने कहा। नहीं, अब कोई फायदा नहीं है, इसका डील डॉल देख कर ही मैंने इस पर तशद्दुद ना करने का फैसला किया था, ये सख्त से सख्त तरीन अजियत भी बर्दाश्त कर सकता है, अलबत्ता इसे अगर अंदर से अजियत दी जाती तो शायद ये कुछ बोल देता, लेकिन मेरी ये कोशिश भी नाकाम हो गई है। अब अगर इसे होश में लाकर इसे सख्ती से पूछ गछ की गई तब भी ये जबान नहीं खोलेगा, मेजर प्रमोद ने कहा। अगर उसने जबान न खोली तो हमें कैसे पता चलेगा कि सी हॉक के मुसाफिर कहाँ हैं और वो इसराइली एजेंट जिसके पास लेबॉर्टरी का नक्शा है, लेडी ब्लैक ने कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मेजर प्रमोद ने कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर अचानक जैसे उसे कोई ख्याल आया और वो झोपड़ी में चारों तरफ देखना शुरू हो गया। क्या हुआ, लेडी ब्लैक ने उसे चौंकते हुए देखकर पूछा। इस झोपड़ी की तलाश के लो, सरदार जिंगू ने ब्लैक शार्क या फिर ऐसे किसी शख्स से ट्रांसमीटर पर ही बात करता होगा, अगर इसका ट्रांसमीटर मिल गया तो मैं इस बात का पता लगा सकता हूँ कि वो ट्रांसमीटर किस किस से और कहाँ कहाँ बात करता है, मेजर प्रमोद ने कहा। तो लेडी ब्लैक ने अजबात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों सरदार जिंगू की झोपड़ी की तलाशी लेने में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उन्हें झोपड़ी की दीवार के एक सुराख में एक जदीद साख का ट्रांसमीटर मिला गया। ट्रांसमीटर देखकर मेजर प्रमोद की आंखें चमक उठी। इससे पहले कि मेजर प्रमोद ट्रांसमीटर चेक करता, उसी लम्हे अचानक ट्रांसमीटर जाग उठा और उससे सीटी की आवाज निकलनी शुरू हो गई। साथ ही ट्रांसमीटर पर लगा हुआ सुर्ख रंग का बल्ब स्पार्क करना शुरू हो गया। ट्रांसमीटर ऑन होता देखकर लेडी ब्लैक और मेजर प्रमोद बुरी तरह से चौंक उठे। किसकी कॉल हो सकती है, लेडी ब्लैक ने होंठ बीचते हुए पूछा। मालूम नहीं, खामोश रहो, मैं बात करता हूँ, मेजर प्रमोद ने कहा। तो लेडी ब्लैक ने अजबात में सर हिला दिया। मेजर प्रमोद ने एक बटन प्रेस किया तो ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ निकलनी बंद हो गई और जलता बुझता बल्ब भी बंद हो गया। मेजर प्रमोद ने एक और बटन प्रेस किया तो इस बार ट्रांसमीटर पर एक सब्ज रंग का बल्ब जल उठा। सब्ज बल्ब जलते ही ट्रांसमीटर से घराहट भरी आवाज़ सुनाई दी। मास्टर जोहम कॉलिंग सरदार सिंगू, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? ओवर। आवाज़ में इस कदर घराहट थी जैसे कोई इंतहाई खूंखार भेड़िया घुरा रहा हो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, ओवर। मेजर प्रमोद ने हलक से सरदार जिंगू की आवाज़ निकालने की कोशिश करते हुए कहा। वो आवाज़ों की नकल करना जानता था, लेकिन उसे आवाज़ों की नकल में इमरान जैसी महारत हासिल नहीं थी। इसकी बदली हुई आवाज़ सुनकर कोई आवाज़ बदलने वाला माहिर आसानी से समझ सकता था कि कोई आवाज़ बदल कर बात कर रहा है। ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है, ओवर। दूसरी तरफ से मास्टर डोहम की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मेरा गला ख़राब है मास्टर, इसलिए मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, ओवर, मेजर प्रमोद ने कहा। मास्टर डोहम शायद आवाज़ें बदलने का फन जानता था, इसीलिए उसने मेजर प्रमोद की आवाज़ सुनकर उसकी आवाज़ की तब्दीली महसूस कर ली थी। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें ट्रेस के बारे में पूछने के लिए कॉल की है। मैं काफ़ी देर से ब्लैक ग्रुप के ट्रेस को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा है और वो उसकी फोर्स तुम्हारे कबीले में ही मौजूद है। बाहर जाकर देखो ट्रेस कहाँ है और क्या कर रहा है और वो मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहा है, ओवर। दूसरी तरफ से मास्टर डोहम ने कहा। ठीक है मास्टर, मैं देखता हूँ, ओवर, मेजर प्रमोद ने होंठ भींचते हुए कहा। उसके साथियों ने कबीले के तकरीबन तमाम अफराद को हलाक कर दिया था। मेजर प्रमोद के लिए ये नई बात थी कि कबीले में ब्लैक पायरेट की कोई खास मखसूस फोर भी मौजूद थी जिसका सरबराह ट्रेस था। शायद ट्रेस भी कबीले वालों के हमरा हलाक हो गया था। अब मास्टर डोहम इससे बात करना चाहता था। मेजर प्रमोद ने ट्रेस को ना देखा तो और ना ही उसकी आवाज़ सुनी थी, इसलिए वो परेशान हो रहा था कि वो अब टेरिस को कहाँ ढूंढे और किस तरह से इसके मास्टर डोहम से बात करवाए। नहीं रहने दो, मेरी इससे बात ना करवाओ, बल्कि इससे कहो कि वो हेलीकॉप्टर लेकर अपने दो चार साथियों के हमरा यहाँ आ जाए। यहाँ दो पाक्षियाई कैदी हैं जिन्हें मैं जजीरे से निकाल कर ब्लैक सिटी भेजना चाहता हूँ। ब्लैक शार्क ने इन दोनों पाक्षियाई कैदियों को फौरी तौर पर मुझे ब्लैक सिटी पहुंचाने का कहा है। तुम टेरिस से कहो कि वो मेरे पास आए और इन कैदियों को लेकर ब्लैक सिटी रवाना हो जाए, ओवर, मास्टर डोहम ने कहा। और उसकी बात सुनकर मेजर प्रमोद की आंखें चमक उठी। ओ ठीक है, मैं टेरिस को आपका पैगाम पहुंचा देता हूं, ओवर। मेजर प्रमोद ने एहतियात के पेश नज़र मुख्तर सी बात करते हुए कहा और इसे खिस्याती जजीरे तक आने का कोड बता देना, इससे कहना कि जब सी स्क्वाड इससे बात करे तो वो कोड के तौर पर पायरेट कहे, जबकि नेवी कमांड जवाब में ब्लैक कहेगी, ओवर, मास्टर डोहम ने कहा। ठीक है, मैं कह दूंगा, ओवर, मेजर प्रमोद ने कहा। कुदरत शायद इस पर मेहरबान थी, इसलिए मेजर प्रमोद के लिए जैसे खुद ब खुद रास्ते बनते जा रहे थे जिसका अब वो भरपूर फायदा उठा सकता था। मास्टर डोहम ने ओवर एंड ऑल कहा और फिर ट्रांसमीटर ऑफ हो गया। ट्रांसमीटर बंद होते ही मेजर प्रमोद ने एक तवील सांस ली और मुस्कुराती हुई नजरों से लेडी ब्लैक की जानिब देखना शुरू हो गया। मेरी समझ में नहीं आया ये तुमसे क्या कह रहा था, लेडी ब्लैक ने पूछा। लेकिन मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मेजर प्रमोद ने कहा। क्या, लेडी ब्लैक ने पूछा। मास्टर डॉम किसाटी नामी किसी जजीरे पर मौजूद है, ये शायद वो जजीरा है जहाँ पर बल्गानेवी शिप सी हॉक के मुसाफिरों को कैद में रखा गया है। सी हॉक में दो पाक्षीय साइदान भी मौजूद थे, शायद ब्लैक शार्क को इस बात का इल्म हो गया है, इसलिए उसने जजीरे के कमांडर से कहा है कि वो इन दोनों साइंसदानों को इसके पास किसी ब्लैक सिटी में पहुंचा दें। इसके लिए किसाटी जजीरे के कमांडर मास्टर डोहम ने इस कबीले में मौजूद अपने एक साथी टेरिस को बुलाया है, जिसके जरिए वो दोनों साइंसदानों को ब्लैक सिटी भेजना चाहता है। मेरे इल्म में ये बात भी आई थी कि सोमालिया से हटकर चंद जजीरों के गिर गैर मामूली जंगी बहरी जहाजों और गन शेप शिप बोट्स को देखा गया है, जो इस अंदाज में हरकत करते हैं जिसे वो किसी जजीरे की हिफाजत कर रहे हों। किसाटी नामी जजीरे के बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत इल्म हुआ था। इस जजीरे पर ऐसी बहुत सी जगहें मौजूद हैं जहां सोमाली कज़ाक अपने ठिकाने बना सकते हैं, लेकिन इस जजीरे के गिर्द समंदर में टाइगर शार्क और बड़े बड़े मगरमच्छों की बहुतात है, जो इस तरफ आने वाली बोट और जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। टाइगर शार्क और खूंखार मगरमच्छों के हसार में मौजूद किसाटी जजीरा सोमाली कज़ाकियों के लिए बेहतरीन पनाह साबित हो सकता है, इसलिए उम्मीद यही की जा रही थी कि सोमाली कज़ाकियों को कोई ग्रुप इस जजीरे पर भी हो सकता है। ये बात अब मेरे इल्म में आई है कि जजीरे पर सोमाली कज़ाकियों का कोई और ग्रुप नहीं बल्कि ब्लैक पायरेट का ही मौजूद है, और इस जजीरे की न सिर्फ हिफाजत करते हैं बल्कि इस जजीरे में आमद और रफ्त के लिए शिप मोटरबोट्स और लांचों की बजाय हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो समंदर में मौजूद हिफाजती सी स्क्वाड और जजीरे के गिर्द मौजूद टाइगर शार्क और मगरमच्छों से भी बचे रहते हैं। हेलीकॉप्टर जब इस जजीरे की तरफ जाता है तो समंदर में मौजूद इनके सी स्क्वाड इस तरफ आने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट से कोड फिक्स कर लेते हैं। जब तक इनका कोड मैच ना हो किसी भी हेलीकॉप्टर को जजीरे की तरफ जाने नहीं दिया जाता, और अगर कोई हेलीकॉप्टर या कोई तैयारा बगैर कोड के तबादले के जजीरे की तरफ जाने की कोशिश करे तो ब्लैक पायरेट का सी स्क्वाड इन्हें समंदर से ही निशाना बनाकर तबाह कर देता है, मेजर प्रमोद ने जवाब देते हुए कहा। तो लेडी ब्लैक ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। अब समझी, मास्टर डॉम ने इसीलिए तुम्हें कोड बताया है कि जब सी स्क्वाड रब्ता करे तो आगे जाने से पहले इन्हें इत्मीनान दिलाया जा सके कि जजीरे पर जाने वाला हेलीकॉप्टर ब्लैक पायरेट का ही है, लेडी ब्लैक ने कहा। हाँ, और शायद हेलीकॉप्टर पर ब्लैक पायरेट का मखसूस निशान भी बना हुआ होता हो ताकि उसे दूर से देखकर अंदाजा लगाया जा सके कि हेलीकॉप्टर कौन सा है और इस जजीरे की तरफ क्यों आ रहा है, मेजर ब्लैक ने कहा। मैं सब समझ गई हूँ और मुझे इस बात का भी अंदाजा हो रहा है कि अब तुम टेरिस की जगह हेलीकॉप्टर पर किसाटी जजीरे पर जाओगे और वहाँ हमला करके मास्टर डोहम और उसके ग्रुप का खात्मा करोगे और वहाँ से बेलगार्नेवी शिप सीहॉक के मुसाफिरों को आज़ाद कराओगे, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमें हेलीकॉप्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब सोचने की बात ये है कि हमारे पास हेलीकॉप्टर कहाँ से आएगा, लेडी ब्लैक ने कहा। मास्टर डोहम ने टेरिस को हेलीकॉप्टर लेकर जजीरे पर आने के लिए कहा है और उसने ये भी कहा है कि टेरिस और इसका ब्लैक ग्रुप इसी कबीले में मौजूद हैं। अगर टेरिस इसके साथी यहीं मौजूद थे तो फिर ये बात भी तय है कि इनका हेलीकॉप्टर भी यहीं कहीं मौजूद होगा, मेजर प्रमोद ने कहा। तो फिर हम ढूंढें हेलीकॉप्टर, लेडी ब्लैक ने कहा। हाँ, बाहर कुछ जख्मी वहशी पड़े हैं, इन्हें ज़रूर मालूम होगा कि टेरिस का हेलीकॉप्टर कहाँ मौजूद है, हो सकता है इनके जरिए टेरिस के बारे में भी हमें थोड़ी मालूमात मिल जाए। तो बाद में हमारे काम आ सकती है, मेजर प्रमोद ने कहा। इसका क्या करना है, लेडी ब्लैक ने सरदार जंगू की जानिब देखते हुए कहा, जो बदस्तूर बेहोश था और अब इसका सारा जिस्म नीला हो चुका था। ये वैसे भी मौत के दहाने पर खड़ा है, इसे होश में लाने का कोई फायदा नहीं होगा, मेजर प्रमोद ने मुंह बनाकर कहा। साथ ही उसने मिशन पिस्टल का रुख सरदार जंगू की जानिब किया और ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे झोपड़ी में तेज तड़ताहट हुई और सरदार जंगू के जिस्म में बेशुमार सुराह होते चले गए। सरदार जंगू के जिस्म को चंद जोरदार झटके लगे, एक लम्हे के लिए उसकी आंखें खुली फिर बंद होती चली गईं। इसके जिस्म से युगलक खून के कई फवारे से फट पड़े थे और हैरत अंगेज बात यह थी कि उसके जिस्म से निकलने वाला खून सुर्ख की बजाय नीले रंग का था। चलो, मेजर प्रमोद ने सपाट लहजे में कहा तो लेडी ब्लैक ने अजबात ने सर हिलाया और फिर दोनों सरदार जंगू की झोपड़ी से बाहर निकलते चले गए। ये एक हाल नुमा कमरा था जिसके औसत में एक जहाजी साइज की मेज पड़ी हुई थी। मेज के पीछे सागो इनकी एक ऊंची निशत वाली कुर्सी पड़ी थी जिस पर एक ठिंगने कत्ता सिया फार्म बैठा हुआ था। इस सिया फार्म का सर साफ था, अलबत्ता इसके चेहरे पर सफेद रंग की फ्रेंच कट दाढ़ी मोछे दिखाई दे रही थी। इसकी आंखों पर छोटे फ्रेम का चश्मा था और कुर्सी की पुष्ट पर टिकाए अपने सेल फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बजी। वो बज उठी तो अधेड़ उमर चौंक कर सीधा हो गया। ओके मिस्टर डेविड, मैं तुमसे फिर बात करता हूँ, ऑफिस के नंबर पर एक कॉल आ रही है, मैं वो सुन लूँ। अधेड़ उमर आदमी सेल फोन पर क्या, अधेड़ उमर ने सेल फोन पर कहा और फिर उसने दूसरी तरफ से जवाब सुनकर कान से सेल फोन हटाया और उसे ऑफ करते हुए मेज पर रख दिया और हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, लांडो स्पीकिंग, अधेड़ उमर ने लहजे में करतबी पैदा करते हुए कहा। एरिक बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज सुनाई दी। एरिक लॉन्ड्रो का पर्सनल सेक्रेटरी था। बोलो, क्यों फोन किया है, अधेड़ उमर लॉन्ड्रो ने उसी अंदाज में कहा। बॉस, एक्रीमा की एक पार्टी आपसे मिलना चाहती है, एरिक ने बड़े मोदीबुल लहजे में कहा। कौन सी पार्टी है और किस सिलसिले में मिलना चाहती है, लॉन्ड्रो ने पूछा। पार्टी बीएस के लिए आपसे डील करना चाहती है और ये खुद को एक्रीमा की रियासत मिशिगन के शहर वाइंडो से अपना तालु बता रही है और इस पार्टी का तालु किसी नाइट ब्रदर्स से है और इन्होंने एक्रीमा के लॉर्ड एंडरसन का हवाला दिया है जिसके तवासुस से वो यहाँ आए हैं, एरिक ने जवाब दिया। नाइट ब्रदर्स, क्या उनके पास कोई आइडेंटिटी है कि उनका ताल्लुक एक्रीमा से है और किसी क्राइम ग्रुप से है और लॉर्ड एंडरसन से उनका क्या ताल्लुक है, लॉर्डर ने पूछा। यस बॉस, उनके पास मौजूदा तमाम कागजात और कार्ड असली हैं, मैंने इनकी चेकिंग कर ली है और मैंने ज़ाती तौर पर एक्रीमा के लॉर्ड एंडरसन से खुद भी बात की है जिसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि नाइट ब्रिड इसी के तवासिस से यहाँ आए हैं, एरिक ने जवाब दिया। क्या तुम्हारी मालूमात कंफर्म है, लॉन्ड्रू ने पूछा। यस बॉस, आप जानते हैं जब तक मैं आने वाले किसी भी पार्टी के बारे में हतमी मालूमात हासिल ना कर लूँ उनके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताता। अगर मुझे किसी भी पार्टी पर शक हो और उनके बयान में कोई तजाद महसूस हो तो मैं उन्हें फौरन अपने ऑफिस से ही निकाल देता हूँ, एरिक ने कहा। ओके, कितने अफराद हैं और इनका सरबराह कौन है, लॉन्ड्रू ने पूछा। 6 अफराद हैं बॉस और उनमें एक खातून भी शामिल है, इनके सरबराह का नाम डोमरान है, मास्टर डोमरान, एरिक ने जवाब दिया। मास्टर डोमरान, ये कैसा नाम है, लांडू ने हैरत भरे लहजे में कहा। मालूम नहीं, उसने बताया कि वो नाइट ब्रेड का चीफ है और वो अपने चंद साथियों के साथ खसूसी तौर पर किंग से मिलने और इससे बीएस की स्पेशल डील के लिए आया है, एरिक ने कहा। ओके, इन्हें मेरे पास भेज दो, मैं खुद भी इन्हें चेक करूंगा और अगर ये फर्द हमारे मेयार पर उतरे तो मैं इन्हें किंग से मिला दूंगा, वरना इनकी लाशें ही मेरे ऑफिस से बाहर जाएंगी, लांडू ने कहा। यस बॉस, ये बात मैंने इन्हें भी बता दी है, एरिक ने कहा। भेज दो इन्हें और इन्हें मेरे ऑफिस में भेजने से पहले चेक कर लेना कि इनके पास कोई असला ना हो, लांडू ने कहा और फिर उसने दूसरी तरफ से एरिक का जवाब सुने बगैर रिसीवर ट्रेडिल पर रख दिया। रिसीवर ट्रेडिल पर रखते ही उसने मेज की दराज खोली और फिर उसने मेज की दराज में रखा हुआ एक भारी रिवॉल्वर निकाल कर अपने सामने मेज पर रख लिया। जैसे वो आने वाले अफराद का इस्तकबाल रिवॉल्वर दिखाकर करना चाहता हो। तकरीबन 5 मिनटों के बाद कमरे का दरवाजा खुला और कमरे में 5 सियाफाम मर्द और 1 सियाफाम औरत दाखिल हुए। इन्हें देखकर एरिक एक तवील सांस लेकर रह गया। आने वाले अफराद अपने डील डॉल और चेहरों से ही जराइम पेशा दिखाई दे रहे थे। मिस्टर लांडो, इन में से एक नौजवान ने लांडो की जानिब गौर से देखते हुए पूछा। यस, मैं ही लांडर हूँ, लांडर के साथ, लांडर ने जवाब दिया। तो इस नौजवान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो सब कमरे की माहियत देखते हुए आगे बढ़ गए। बैठे, लांडर ने इन सब की जानिब गौर से देखते हुए कहा। तो वो सब आगे बढ़कर लांडर के सामने मेज के पास पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठते चले गए। इन सबकी नज़रें लांडर के सामने पड़े हुए रिवॉल्वर पर जमी हुई थी। मेरा सेक्रेटरी बता रहा था कि आप एक्रीमा की रियासत मेशीगन से आए हैं और आपका ताल्लुक नाइट बट से सिंडिकेटेड से है। लांडू ने इसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। हाँ ऐसा ही है, हम ब्लैक सिटी के किंग जैक से डीएस की डील के लिए आए हैं और हमने आपके सेक्रेटरी को अपनी सच्चाई के तमाम सबूत दे दिए हैं, नौजवान ने बड़ी संजीदगी से कहा। क्या आप मिस्टर डोमरान हैं, लांडू ने पूछा। जी हाँ, नौजवान ने कहा। ओके, ये बताएं कि आप डीएस कितनी मकदार में हासिल करना चाहते हैं, लांडू ने पूछा। आप कितनी मुहैया कर सकते हैं, डोमरान ने आगे बढ़कर कोहनिया मेज पर टिकाते हुए लांडू की जानिब गौर से देखते हुए बड़े राजदाराना लहजे में पूछा। अगर आप किंग से मिलना चाहते हैं तो फिर आपको किंग से कम अज कम $1 करोड़ की डील करनी होगी। इसके लिए आपको एडवांस पेमेंट अदा करनी होगी, लांडू ने भी सर आगे करते हुए कहा। मैं इससे भी बड़ी डील करना चाहता हूँ, डोमरान ने उसी अंदाज में कहा। मैंने कम अज कम की बात की है, बड़ी से बड़ी आप जितनी चाहें डील कर लें, लांडू ने कहा। ओके, फिर मेरी किंग से मुलाकात करा दें, मैं इससे इतनी बड़ी डील करूंगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता होगा, डोमरान ने कहा। मुझे इस डील की मालियत के बारे में बताएं, लांडू ने इसकी जानिब गौर से और इंतहाई हैरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। मालियत से आपकी क्या मुराद है, डोमरान ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। डील के लिए आप कितना एडवांस दे सकते हैं और एडवांस देने का जरिया क्या होगा, लांडू ने बगैर किसी तरवीज के कहा। मैं किसी के जरिए यकीन नहीं रखता, डील वो होती है जो नाक हो, डोमरान ने कहा। आप 1 करोड़ से ज्यादा की डील करने का कह रहे हैं और इतनी बड़ी मालियत के डॉलर्स आप नाक देंगे, मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप यहाँ डॉलर्स बोरियों में भरकर लाए हैं, लांडू ने इस बार इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने आपसे कब कहा है कि मैं 1 करोड़ से ज्यादा डॉलर की डील करना चाहता हूँ, डोमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर कितने की डील करना चाहते हैं आप, लांडू ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। मैं यहाँ सिर्फ 1 डॉलर की डील करने आया हूँ, डोमरान ने कहा। इसकी बात सुनकर लांडू पहले हैरत भरी नजरों से इसकी तरफ देखता रहा जैसे इसे डोमरान की बात समझ में ना आई हो, मगर दूसरे लम्हे इसका चेहरा गुस्से से सिया पड़ता चला गया। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या मजाक है, आप 1 डॉलर में ब्लैक स्मोक हासिल करना चाहते हैं, लॉन्डर ने बड़े गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं, हाफ डॉलर में, अगर क्वार्टर डॉलर में काम चल सकता है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, डोमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। और इस बार लॉन्डर की आंखें शोले उगलने लगीं। उसने मेज पर पड़े हुए रिवॉल्वर की जानिब हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि वो रिवॉल्वर उठाता, डोमरान ने अचानक उठकर झपटा और मेज पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर उठा लिया। उसे रिवॉल्वर उठाता देखकर लॉन्डर बौखला गया और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। कुक को क्या मतलब, तुमने ये रिवॉल्वर क्यों उठाया है, लॉन्डर ने तेजी लहजे में कहा। रिवॉल्वर, ये रिवॉल्वर है, मैं तो इसे तोप समझ रहा था, डोमरान ने रिवॉल्वर का रुख लॉन्डर की जानिब करते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो, ये तोप नहीं रिवॉल्वर है, नॉनसेंस, मुझे दो ये रिवॉल्वर, लॉन्डर ने कहा। नहीं, पहले मैं ये चेक कर लूँ कि ये असली है या नकली, डोमरान ने कहा और साथ ही उसने ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे कमरा जोरदार धमाकों के साथ लॉन्डर की तेज चीख से गूंज उठा। लॉन्डर चीखता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। गोली साए की तेज आवाज के साथ उसके दाएं कान के करीब से गुजर कर पीछे दीवार में जा घुसी थी। लॉन्डर कुर्सी पर यूं साकत हो गया था जैसे गोली उसकी खोपड़ी में घुस गई हो। अब वो आंखें फाड़े इमरान की जानिब देख रहा था। अरे वाह, बड़े जोरदार आवाज है इसकी, दो चार और फायर करूं, डोमरान ने कहा और लॉन्डर बुरी तरह से बौखला गया। क्योंकि डोमरान ने रिवॉल्वर का रुख एक बार फिर उसकी तरफ कर दिया था। पार्ट 18 यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। किताब ब्लैक शार्क का बकिया हिस्सा पार्ट 19 में समाप्त फरमाएं।